हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 17 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। न कामयिनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं भुजासव महत्तमान्तर् हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकरणं युतमीशमीवर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनम् तं नमामि हरि परम्। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमोहसाम् महत्तामपि कौरव्य विद्धयैकान्तिक निष्कृतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो विदुर जी ने जब प्रश्न किए उसके उपरांत मैत्रेय मुनि ने बहुत ही सुंदर रीति से उत्तर देकर बताया कि इस भौतिक जगत में क्लेश तो केवल उसी को है जो अपने अस्तित्व को भूल गया है। परंतु जब हम अपने अस्तित्व को पहचान जाते हैं और समस्त भौतिक इच्छाओं को वस्तुओं को त्याग कर जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो ये भौतिक कष्ट हमें परेशान नहीं कर पाते हैं। और इसी चीज़ को इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 17 में एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। ये इतना सुंदर श्लोक है हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और ये श्लोक है ना श्रील प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। विदुर जी कहते हैं यश्च मूढ़ातमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः ताउ भव सुखमेधेति किल्ष्यत् यन्तरितो जना। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परं गतः ताउ बहु सुखमेधेति किष्यत्यन्तरितो जनः। तो यहाँ विदुर जी बता रहे हैं कि दुख किसको मिल रहा है संसार में और किसको नहीं मिल रहा है। वे कहते हैं यश्च मूढ़तमो लोके, यश्च माने जो भी मूढ़तमो मतलब बहुत हद से ज्यादा बेवकूफ है ना, बिल्कुल पागल है ना, जो लोके माने संसार में जो बिल्कुल पागल है वो, और यश्च बुद्धि परम गता, यश्च माने जो बुद्धि माने बुद्धिमान परम गतम दिव्य, जो दिव्य बुद्धि प्राप्त किया हुआ है ना वो, तवो भव वो दोनों इस संसार में सुखी हैं बस। यानी कि इस संसार में दो लोग सुखी रह सकते हैं, या तो पागल या सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अब डिसाइड ये करना है कि हमें को क्या बनना है। आगे कहते हैं कि किल्षत्यंतरितो जना, किल्षति अर्थात कष्ट पाते हैं, अंतरितो मतलब बीच में स्थित, जना मतलब सारे लोग, जितने लोग भी बीच में हैं। किसके बीच में? एक तो बिल्कुल पागल हो जिसको पता ही नहीं हो कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, वो गंदगी में पड़ा हुआ, उसको कपड़े मिले नहीं मिले, खाना मिले नहीं मिले, बस ऐसे ही पागलों की तरह जो जीता है वो सुखी है। और एक कौन? जो बुद्धे परम गता, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो है जो मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यहाँ पर लिखा हुआ जो ज्ञानियों में सबसे ज्यादा, जिस जो ज्ञानवान होगा ना, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा ना, वो मेरी शरण में आएगा। यही शास्त्र बार बार बताते हैं कि बुद्धि इस संसार में बुद्धिमान वही है। यज्ञ संकीर्तन प्राज्ञ, जो बुद्धिमान है वो भगवान का संकीर्तन यज्ञ करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर पता है क्या होता है? वो परम बुद्धिमान है तो उसको दुख नहीं लगता, और दूसरा पागल है तो उसको दुख नहीं लगता। बाकी तव भव सुखे में दे किल्षत्यंतरी तो जना, इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब पागल, ओ सब दुखी है, यानी दुख भोगते हैं। अनुवाद देखिए, निष्कृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निष्कृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते, क्योंकि जो पागल होते हैं उनको तो याद ही नहीं रहता कि मुझे कितना दुख मिल रहा है, ये है कितना मुझे, वो तो पागल होता है ना। तो वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं जिस तरह पशु होते हैं ना, उनको भी पता नहीं रहता कि हमारे पर क्या गुजर रही है, हमारे साथ क्या बीत रही है। उनको जिज्ञासा नहीं होती है कि हम पशु क्यों बने हैं, क्यों किसी मालिक के दबाव में हमको काम करना पड़ता है, सर उनको पता ही नहीं होता ना। उसी तरह से जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना संसार में, सिर्फ पागल ही बेवकूफ़ नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि जो इस संसार में सुखी हैं वो सब पागल हैं। जो समझ रहे हैं ना कि हम सुखी हैं, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और फिर भी इस भौतिक जगत में रहकर वो सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, तो वो पागल है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पशुओं की तरह रहते हैं वो। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते, यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नज़रों में वे सदैव दुखी रहते हैं। जो श्रेष्ठ जन है वो तो जानते हैं ना, जो बुद्धिमान है वो तो जानते हैं कि पागल है, इस संसार में केवल दुखी दुख है, और सुख के लिए पर्याप्त मात्रा में यदि कोई प्रयास करता भी है, उसे जो मिल रहा है वो सुख नहीं है, केवल भ्रांति है। तो दूसरे जो बुद्धिमान है, जो भक्त हैं, वो तो देख रहे हैं ना। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सिंसियर और सीरियस बात बता रहे हैं कि जो लोग इस संसार में अपने आप को सुखी मानते हैं, ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं, जो भौतिक क्लेशों से अवगत ही नहीं होते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा व्या, उनको बताओ ना, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आपको बार बार मृत्यु लेनी पड़ेगी, आपको है ना त्रिताप बार बार सता। तो बोले किसने देखा है भाई, नरक किसने देखा है, किसने यातना देखी, हम तो मजा कर रहे हैं, इतना आनंद है संसार में, हो तुम बोल रहे हो दुखालयम दुखालयम। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये वो जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते, यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजर में वे सदैव दुखी रहते हैं। शूकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है। किंतु शूकर को यह ज्ञात नहीं है, इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौवन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निष्कृष्टतम मूर्ख हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पर जो मूर्ख बताया गया ना, यश्च मूढ़तमो लोके, वो सिर्फ पागलों को नहीं बताया गया है, उनको बताया गया है जो इस संसार में कितना कष्टमय जीवन बिता रहे हैं, भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं है, और वो क्या करते हैं, यौन सुख, केवल सेक्सुअल लाइफ में बहुत कठिन श्रम करते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो वास्तव में मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझा ही नहीं है। और ये जो भौतिक सुख हैं वो तो कुत्तों और सुअरों को भी मिल रहे हैं, वैसा ही सुख यदि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो बहुत परिश्रम से प्राप्त भी कर लेता है, तो उसने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वे निष्कृष्टतम मूर्ख हैं, फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। उनको पता ही नहीं है तो उनको लगता है यही सुख है, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, कपड़े पहनो अच्छे अच्छे, सेल्फीज निकालो और मूवीज देखो, और इस संसार में केवल दूसरे जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के सुख हैं, उनको ही एकत्रित करते रहो, तो देखने में लगता है कि वाह ये कितने सुखी है, तो वो तथाकथित सुख भोगते हुए प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं असली सुखी तो वो हैं जो परमहंस हैं, जो इस असार संसार से भौतिक वस्तुओं को छोड़कर केवल भगवत भक्ति को ही अपनाते हैं। जैसे हंस पानी को छोड़कर दूध को अपनाता है, उसी तरह परम हंस जो है वो किसी भौतिक वस्तु में आकर्षित नहीं होते हैं, वो वास्तविक बुद्धिमान हैं, दिव्य स्तर पर हैं। और किंतु वे लोग जो ना तो कुकरों सूकरों की तरह हैं, ना ही परम हंस के स्तर पर हैं, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं, और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। अब शीला प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं कि आप तो देखो, हम सब तो अच्छे हैं, कुत्तों बिल्लियों की तरह तो नहीं जी रहे ना, हम तो फिर भी अपने जीवन के लक्ष्य को तो जान रहे हैं, लेकिन अभी तक परम हंस नहीं बने हैं, तो हमको ना संसार में आनंद आता है, ना ही हम परमहंस बने हैं, तो इसी के कारण हमको अनुभव हो रहा है दुख सुख लाभ हानि। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो ना तो कुकरों सुकरों की तरह है और ना ही परमहंस के स्तर पर है, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं, और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। तो उनके लिए सारे शास्त्र हैं जिनको पढ़कर और गुरु की शरण लेकर वो ये जान सकें कि हम किस तरह से इस भौतिक क्लेशों से छूट सकें और परमहंस की स्थिति पर, यानी भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त की स्थिति तक पहुंच सकें। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेदांत सूत्र का कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, मतलब जब मनुष्य बने हैं तो खाली जो कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं जीना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को बुला दिया है। तो वो लोग जो जो परमहंस और मूर्खों के बीच में हैं, उनको ये शास्त्र, ये गुरु, ये साधु जब उनके शरण में आएंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार को समझकर, अपने वास्तविक स्थिति को समझकर वो भगवत भक्ति में लगेंगे और फिर वो भी इस भौतिक जगत के क्लेशों से छूट जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है, हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश है। क्या अब ना तो हमें भौतिक जगत में आनंद आने वाला है, क्योंकि एक बार हायर टेस्ट प्राप्त हो गया ना, तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा, हायर टेस्ट प्राप्त हो गया, अब तो इस भौतिक जगत में टेस्ट आएगा ही नहीं। भले हम कितना भी कोशिश करें, अब हम संसार में सुखी नहीं हो सकते, अब तो सीरियस होना पड़ेगा। अब तो भगवत प्राप्ति के रास्ते पर बहुत ही बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ, यत्न के साथ आगे बढ़ना होगा, और भगवान बहुत साथ देंगे। भगवान ने कहा आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ, मैं हाथ पकड़कर, बाकी का सारा रास्ता मैं खुद ही आगे बढ़ूंगा, हाथ पकड़कर तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा। लेकिन हमको सीरियस होना पड़ेगा इस बात में, क्योंकि अब और कोई रास्ता ही नहीं है। सारे रास्ते तोड़कर, सारे रास्ते जो हैं उनको बंद करके हम कृष्ण भक्ति के रास्ते पर आगे निकल रहे हैं। अब पीछे जाने का कोई चांस ही नहीं। आप कितना भी कोशिश करो, एक बार भक्ति की राह पर आगे निकल गए ना, अब संसार में कुछ नहीं आनंद आएगा। कुछ भी, चाहे संसार का सबसे बड़ा खाना पीना घूमना फिरना इंद्रिय सुख, अब बहुत पीछे छूट गए भक्तों। अब तो बस कृष्ण प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। तो आगे विदुर जी महाराज कहते हैं कि ये वास्तविक जो भगवान के अंदर प्रीति है वो कैसे उत्पन्न होगी, कैसे हम परम हंस की स्थिति पर पहुंचेंगे, और हम किस तरह से ये जो संसार है उसको असार और मिथ्या समझ जाएंगे, उसमें बिल्कुल भी हमें रुचि नहीं रहेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वे कहते हैं अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मचरण सेवयाहं परारुदे। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मचरण सेवयाहं परानुदे। अर्थाभावम, अर्थाभाव मतलब बिना सार के, इस संसार में कुछ सार नहीं है, अर्थ अर्थहीन है, अर्थ अभाव है, मतलब अर्थ का कुछ रिजल्ट नहीं है, कुछ भी कर लो अर्थ नहीं है उसका, बिल्कुल व्यर्थ है। अर्थाभाव मतलब व्यर्थ का है। और विनिश्चित्य यानी सुनिश्चित है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि संसार में कुछ भी कर लो वो व्यर्थ ही है। प्रतीतस्य बाह्य मूल्यों का अपी मना भी ना, मतलब कभी नहीं, आत्मना, आत्मा का इस संसार में कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। फिर ताम चापी, ताम मतलब उससे, च मना भी, अपी मना इस तरह, युष्मत यानी तुम्हारे, युष्मत चरण सेवा, चरण मतलब पाँव, और सेवया मतलब सेवादार, अहम में, पराणुदय त्याग सकूंगा मैं, तभी इस असार जो बिल्कुल व्यर्थहीन है, व्यर्थ संसार है, उसके आकर्षण को तभी त्याग सकूंगा। ताम चापि युष्म चरण सेवया हम परानुदा, कि जब मैं आपके चरण कमलों की अच्छी तरह से सेवा करूंगा। इसका मतलब ये है कि जब तक हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते ना, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। अनुवाद देखिए, विदुर जी कहते हैं, किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। वास्तव में हम सब कृतज्ञ हैं मैत्रेय मुनि का, सुखदेव गोस्वामी का, सूत गोस्वामी का, क्योंकि उन्होंने हम सब पर कल्याण करने के लिए इतनी सुंदर कथा का वाचन किया। लेकिन उस सब से बढ़कर हम कृतज्ञ हैं श्रील प्रभुपाद जी का, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज इस शास्त्र के शब्दों को समझ पा रहे हैं। कितने कष्ट उठाकर उन्होंने एक एक शब्द को समझाया है। वो ये सोच सकते थे ना, अभी इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखने की क्या जरूरत है ना, लेकिन एक एक चीज को कितनी मेहनत से उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत किया। तो हम लोग कितने कभी भी कृतज्ञ नहीं फील करते ना, हम लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा को जानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है और हमने क्या किया उनके लिए। हमको कुछ तो उनके, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे शास्त्र हैं, जब तक तुम मेरे शास्त्रों को पढ़ोगे, जब तक तुम मेरे शास्त्रों को वितरण करोगे, तब तक आई विल नेवर डाई, आई विल लीव फॉर द सेंचुरीज। मैं तो सदियों तक जीता रहूंगा अगर इन किताबों का वितरण। और हम इन किताबों के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। आज हमको किसी को भी अगर कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान है, अगर हम मूर्खता से अगर बचकर थोड़ा भी यदि हम भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका सारा का सारा श्रेय तो इन किताबों को ही जा रहा है, इन शास्त्रों को ही जा रहा है ना। तो इनके लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जितना हम से हो सके इन शास्त्रों का वितरण करना चाहिए, इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इन शास्त्रों का संसार में बताना चाहिए सबको कि श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्र ही। हमको सिर्फ सिंसियर होना है, हमको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंसियर होना है। आज हम दूसरों की तारीफ करते रहते हैं, जिनसे सीखा है उनकी भी तारीफ करते, लेकिन जिनसे सीखा है उन्होंने भी तो इन शास्त्रों से ही बताया ना। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्लोरीज करने, ऑल ग्लोरीज फॉर द श्रील प्रभुपाद, अगर भक्ति में आने के बाद वास्तव में कोई ग्लोरियस है जिसके लिए हम कृतज्ञ हों, तो श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, अर्थाभावो विनिश्चित्य, ये बिल्कुल सार रहता है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ताम चापि युष्म चरण सेवयाम, कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरण कमलों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग करना संभव होगा। कि जो संसार में थोड़ी सी आसक्ति रह गई है कि मुझे ये सार प्रतीत होता है, तो वो मैं जब जैसे जैसे आपकी सेवा करूँगा तो फिर मेरे लिए ये संभव हो जाएगा कि ये रुचि समाप्त हो जाए। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भद्र जीव के कष्ट सत्य ही होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता है। जैसे कि हम अब तक पढ़ गए कि जो भी कष्ट है वो केवल अज्ञानता के कारण हमें फील होता है, कष्ट तो आत्मा के लिए है ही नहीं, सिर्फ उनका कोई वास्तविकता तो है ही नहीं। तो जिस तरह स्वप्न में किसी के सर को काटने का कोई महत्व नहीं होता है, यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पद के नव जिज्ञासियों के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अतीव कठिन है। ये बताना तो बहुत आसान है ना, जैसे हम लोग कितना आसानी से बताते हैं कि संसार में कष्ट ऐसे ही है, जैसे सपने में कोई हमारा सर काट देता है, कोई पांव काट देता है, कोई हाथ काट देता है, और फिर जाग के बोलते हैं अरे वाह शुक्र बच गया। बताना कितना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम देखें संसार में, थोड़ा सा भी यदि कोई हमें कुछ बोलता है कि तुम ऐसी हो, तुमने ऐसा किया या कुछ भी, तो हमको कितना दुख होता है, थप्पड़ मार देना तो बहुत बड़ी बात है, सर काट देना तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो बस हम उसी को, या उसने मेरे को ऐसा कैसे बोला, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो जब पूरा का पूरा अगर तुम्हें कोई काट भी देता है, सर काट के हैंग कर देता है, फिर भी वो सपना समझना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी सार नहीं है, तो छोटे छोटे चीज़ों में क्यों दुखी हो रहे हैं। तो शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि हम इतने जन्मों से इसी भौतिक जगत में रहते आए हैं, तो इसके कारण शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप से अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के नवजिज्ञासियों के लिए इसकी अनुभूति कर पाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है कि हम इसको वास्तव में मिथ्या माने, है ना। कितने अपने लगते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, और जिन जो हमें पसंद नहीं लगते, उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। जब सब कुछ असत्य है तो क्या किसी के बारे में सोचना, है ना। जब सब कुछ असत्य है तो किसी भी चीज़ के लिए क्या दुखी होना। तो शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत कठिन है इस स्थिति तक पहुँचना, लेकिन उसका एक सरल उपाय है, ताम शापी युष्म चरण सेवया हम, कि किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। बस एक ही यहाँ पर तरीका बताया है, ताम शापी युष्म चरण सेवया, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके चरणों की सेवा करने से और निरंतर उनकी संगति करने से हमारे मन में जो ये विचार है ना कि हमें दुख मिल रहा है, आत्मा को बहुत ही क्लेश भोगना पड़ रहा है, वो धीरे 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 दुख समाप्त हो जाएगा और फिर फील नहीं होगा। इसलिए आगे विदुर जी कहते हैं, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुत्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर् व्यसनार्दन। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुत्विषः रतिरामो भवेत् तीव्रः पादयोर् व्यसनार्दनः। यत् सेवया, यत् मना जिसको, सेवया मना सेवा द्वारा, भगवतः यानी भगवान का, कूटस्थस्य, कूट मतलब अपरिवर्तनीय का, भगवान जो कूटस्थ हैं, मधु विषय मतलब मधु असुर का शत्रु, मधु राक्षस को मारने वाला, रति रासो भवे तीव्र, रति रास यानी विभिन्न संबंधों में अनुरक्त, जो हम हर एक व्यक्ति और संबंधों में बहुत अनुरक्त होते हैं, भवेत यानी उत्पन्न होती है, तीव्र यानी अत्यंत भावपूर्ण, पादयो यानी चरणों की, व्यसन क्लेशन, व्यसन मतलब क्लेश और अर्दन मतलब नष्ट करने वाले। तो शीला प्रभुपाद यहाँ पर विदुर जी कहते हैं, जब हम यत् सेवया यानी जब हम शुद्ध वैष्णवों की, गुरुओं के चरणों की सेवा करते हैं, तो यत् सेवया यानी गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। यत् सेवया भगवत कूटस्थस्य मधु विषय रति रासो, भगवान की जो भगवान मधुसूदन है, जो अपरिवर्तनीय है, उस भगवान के प्रति हमारा प्रेम तब बढ़ता है जब हम गुरुजनों की, अपने शुद्ध वैष्णवों की जब हम सेवा करते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है ना। हम लोग तो भगवान की सेवा में लगे होते हैं खाली, बस कि भगवान की सेवा करें भगवान, लेकिन भगवान की सेवा करते हुए भी कभी भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है वो समाप्त नहीं होती है, भौतिक जो क्लेश है वो समाप्त नहीं होते हैं, भौतिक संसार जो हमें सार लगता है ना, असारता जो फील नहीं होती है वो तब खत्म होगी जब इस संसार के प्रति जो हमारा अभी तक, हम कभी कभी बोलते हैं ना, अभी तक क्यों मुझे संसार में आकर्षण होता है, अभी तक क्यों मुझे दुख लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि कभी भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं की है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि शुद्ध भक्तों की सेवा का अवसर, और वो सबसे सुंदर सेवा क्या है शुद्ध भक्तों की, कि इन श्रील प्रभुपाद जी के को प्रसन्न करना है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बुक्स को वितरित करो। तो किसी तरह से भी हमें शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भक्तों की सेवा में दिव्य, उन भगवान की सेवा करने में दिव्य अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और उनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो जब जैसे जैसे हम भक्तों की सेवा करते जाएंगे ना, तो ही हम जो है ना सच्ची में भगवान से प्यार करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये शुद्ध भक्तों की कृपा से होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैत्रेय मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक होती है। अब विदुर जी के बारे में तो आप जानते हो, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उसके साथ साथ भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, भगवान ने उनको स्वीकार कर दिया कि ये मेरे हैं, तभी तो उनके घर में बगैर बुलाए जाते हैं। उनको क्या ज़रूरत है, हमको लगता है भाई हम तो पहले से शुद्ध भक्त हो गए, हमको ज़रूरत नहीं है भक्तों की सेवा करने। लेकिन विदुर जी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे ये जो आप मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपके कारण मुझे समझ में आया कि संसार में कोई सार नहीं, ताम चापी युष्म चरण सेवया हम, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूँगा। भगवान तक पहुँचने के बाद अब आए कि मुझे ना आपके चरण कमलों की सेवा करनी है। और रति रासो भवे तीव्र, तो भगवान के चरणों की तरफ तीव्र रति तभी पादयोवर, जब मैं आपके चरण कमलों की सेवा अच्छे से करूँगा। यद सेवया भगवत कूटस्थ मद्विषयत, कि आपकी सेवा करने से उस भगवान के अंदर रति मेरी अच्छी उत्पन्न हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक होगी। ऐसा कोई शुद्ध भक्त मिल जाए ना, तो समझो हो गई भगवान दिव्य आसक्ति प्राप्त करने हो गई, जो हमें करना है ना भगवान के प्रति जो आसक्ति, वो उसी क्षण लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भगवान मधु असुर के शत्रु हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। इस श्लोक में रति रास शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों यानी संबंधों, शांत वीर सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। रति रासो भवे तीव्र, तो भगवान की जो ये सेवा है अलग अलग तरीकों से अलग अलग रसों में की जाती है। भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपर्युक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है, और जब यह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है तो भौतिक जगत में उसकी अनुरक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.59 में कहा गया, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करने के बाद जब हमको उनके आशीर्वाद से भगवान के अंदर प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, यत सेवया भगवतः, यत सेवा उनकी सेवा करने से भगवान के प्रति हमारा भाव जो है वो तीव्र हो जाएगा, रति रासो और अलग अलग भाव से जो भी भाव हमें सूट करेगा उसमें हम भगवान की सेवा करेंगे, और जब तब जो टेस्ट आएगा, फिर भौतिक जगत का टेस्ट जो है वो भौतिक जगत का दुख जो है वो बहुत पीछे छूट जाएगा, तो भौतिक जगत के उसी अनुरक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आगे विदुर जी कहते हैं, दुरापा यल्पता पसह सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। दुरापा यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। दुरापा मन, दुरापा मन बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है जानते हो? ह्यल्प ही मन निश्चय ही अल्प तपसा, अल्प तपस्या वाले की सेवा, सेवा मतलब सेवा, वैकुंठ यानी ईश्वर के धाम के वर्त्मसु मार्ग पर, यत्र पगीयते, यत्र मन जिसमें, उपगीयते मतलब महिमा गाई जाती है, नित्यम सदैव देव देवो जनार्दना, देव देवो, देव मतलब देवताओं के, देव मतलब स्वामी, जन अर्दना मना जीवों के नियंता। तो श्रील प्रभुपा जी बता रहे हैं कि इस संसार में बहुत मुश्किल है मनुष्य का जन्म प्राप्त करना, लेकिन उससे मनुष्य का जन्म भी फिर भी इतना दुर्लभ नहीं है जितना इस मनुष्य जीवन में भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा प्राप्त करना। दुरापा ह्यल्प तपसा, तो अनुवाद देखिए, जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। दुराप्य हल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्त्मना। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर कराची में मैंने देखा है कि लोग अपनी भौतिक जीवन में इतना बिजी हैं कि कभी भी कोई वैष्णव आता है ना तो उसका अच्छे से सत्कार नहीं होता है। हम देखते हैं अच्छे अच्छे भक्त यहाँ पर आते हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उनका सत्कार करे ज़्यादा। वह एयरपोर्ट पे पता है हम जाते, कभी सर्वमा प्रभु आते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से श्यामानंद प्रभु आते हैं, कुछ भी मतलब ऐसे वैष्णवों की शुद्ध भक्त जो कितना भगवान की सेवा के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन परित्याग कर लिया है, तो लोग समझते हैं कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़े है जाना, है ना। और यहाँ पर भी ऐसा होता है जिधर वो रहते हैं तो, लेकिन मैंने ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज़ किया है जो अदर जो सिटीज़ हैं जहाँ छोटे लोग हैं, जहाँ पर सिंध इंटीरियर में, सिंध दूसरी जगहों में, वहाँ पर पता है सिंध में इतना आदर होता है संतों का। मैं जाती हूँ ना कभी सर्वमा प्रभु के साथ, इतना आदर होता है, बड़े बड़े मुखी, बड़े बड़े लोग आके उनका इतना सत्कार करते हैं, दूर तक पता है लाइनें बनी हुई होती हैं क्यूज में उनका, है ना, इतना आदर हुआ और इतना रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु हमारे घर पे चरण घुमाइए, हमारे घर पे अवश्य आइए। तो मैंने देखा है, पता नहीं, मैं ऐसे सोचती थी पता नहीं क्यों यहाँ के लोग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ इसका उत्तर देते हुए विदुर जी कहते हैं, दुरापा ह्यल्प तपसः, जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते। मतलब इसके लिए, शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं, शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। उनके जीवन का तो और कोई लक्ष्य ही नहीं होता है और कोई उद्देश्य ना, उनको खाने की, मैं देखती हूँ सुबह से लेकर रात तक उनके लेक्चर्स होते हैं। सुबह वो एक लेक्चर होता है 10 बजे, उसके बाद 12 बजे, उसके बाद 2 बजे, उसके बाद 5 बजे, उसके मैं उनको बोलती हूँ प्रभु आप एक दिन में कैसे मेंटेन करते हो? लेकिन शत प्रतिशत भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं और वो जब बोल रहे होते हैं तो लोगों के हृदय में ऐसे भगवान की भक्ति जो है वो तीव्रता से उत्पन्न हो रही होती है। तो विदुर जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त शत प्रतिशत उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है कि मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है, जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम यानी वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं, और जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बातें ना करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, सारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी साधु हैं, उन्होंने ये बताया है कि मुक्ति का मार्ग जो है वो भगवान के भक्तों की सेवा करने से, जो महात्मा जन है, जो केवल मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं करते, जो केवल शुद्ध चिंतक बनकर वेदों की बातें नहीं करते हैं, बल्कि जो भगवान के भक्ति की, भगवान के सेवा की, भगवान की महिमा की सदैव, उनके नाम गुण लीलाओं का सदैव कीर्तन करते रहते हैं, उन महात्माओं की सेवा करके ही हमको मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। तो संगति की यह प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कलह तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किसी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सनातन काल से यही बात है, जैसे रामचंद्र जी जब शबरी को बताते हैं नवदा भक्ति के विषय में, तो प्रथम भक्ति श्रवण नहीं बताते, वे कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी सेवा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। सबसे पहली भक्ति है भक्तों का संग करना, और चैतन्य महाप्रभु जो पांच भक्ति के अंग बताते हैं उनमें भी सबसे पहला है साधु संग, और जो भक्ति की नौ साधु संग, आदर श्रद्धा तथा साधु संग, तो साधु संग ही प्रमुख है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि किंतु इस कला तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है, अब यहाँ पर तो बता दिया कि जिन्होंने बहुत बहुत तपस्या की होगी वही शुद्ध भक्तों का संग कर सकता है, लेकिन दुरापा ह्यल्प तपस्या, जो जिनकी तपस्या कम है वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भले ही ज़्यादा तपस्या नहीं, क्यों हमको ये नहीं सोचना चाहिए भाई हमने तो तपस्या की नहीं है इसलिए तो हमको शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। अनुकूल तपस्या की निधि ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमाओं के श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। तो भगवान के भक्त ये कभी नहीं बोलते भाई आपने तो ज्यादा तपस्या नहीं की है ना, हम आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारे हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है शुद्ध भक्तों की संगति की, उनकी सेवा की, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक निर्णय बता रहे हैं कि अनुकूल तपस्या की निधि ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमाओं का श्रवण और कीर्तन करने में लगे रहते हैं, महात्मा के डेफिनेशन ये बता रहे हैं जो सदैव श्रवण करते हैं और सदैव भगवान की लीलाओं, नाम गुण लीलाओं, महिमाओं का कीर्तन करते रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापिस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति करता है। हमको देखना चाहिए कि शुद्ध भक्तों की किस तरह से सेवा कर सकें, किस तरह से उनको कंफर्ट मिल सके, किस तरह से उनकी संगति कर सकें, उनसे सुन सकें, तो यही मुक्त यानी भगवत धाम जाने का एक पथ है जिस पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए सदैव कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।